ओम शांति। मैं कई बार ये सोचता हूं कि हमारी दादियां, वो दादियां कैसे बनी, उनकी स्थिति, आज हम लोग इतनी भट्टियां, इतनी मेहनत, इतने सम्मेलन, इतने सेमिनार, इतनी सेवाएं करते हैं, फिर भी ऐसे अनुभव होता है कि हम उनकी स्थिति से बहुत दूर हैं। ऐसा मुझे लगता है, दूर है। फिर ध्यान में आता है कि ऐसा उन्होंने क्या किया होगा जो उस अवस्था को प्राप्त किए होंगे, क्योंकि कुछ तो पुरुषार्थ होता है और यहाँ पर जो पुरुषार्थ होता है वो सहज होता है। वहाँ बाबा का, साकार बाबा का साथ था, नहीं उनके साथ और भी कई दीदियाँ साकार बाबा के साथ रही हुई हैं, पर दादी के केडर पर हम नहीं उतर पा रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि जैसे समझे हमारे ऋषि मुनि जो भी थे, उन वो ऋषि मुनि कैसे बने। एक बात, तो उन्होंने घर बार छोड़ा। जैसे एक राजा था भर्तृहरि, वो राजा था, ठाट बाट थे, परंतु कुछ कारण से उसने राज्य भाग्य छोड़ दिया और जंगल में चला गया, तो वो ऋषि कहलाया। तो पहली जो बात है, दादियों की विशेषता ये रही कि उन्होंने घर बार छोड़ दिया। यहाँ तक कि किन्हों को बच्चे भी थे, जैसे पुष्प शांता दादी है, उनके 6 करीब बच्चे, उनको वो छोड़ करके छोटे छोटे वो यज्ञ में आ गई। तो ऐसे कई उदाहरण होंगे जो 300-400 भाई बहनें 1936-37 में सिंध हैदराबाद से निकल करके कराची आ गई, तो घर छोड़ दिया ना, संबंध छोड़ दिए। तो आवास का छोड़ना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहा जाता है मनुष्य यदि किसी पीछे पड़ता है तो वह जर, जेवर और जमीन के पीछे पड़ता है। तो जर, देह की चिंता मनुष्य को सताती है, वो बार बार अपने देह की ओर देखता है, देह के लिए ही सारा कार्य होता है। आप किसी से भी पूछेंगे जो पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने वाले को पूछेंगे कि भाई क्यों पढ़ाई करते हो, तो सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, नौकरी के लिए, नौकरी क्यों चाहिए, पैसे के लिए, पैसा क्यों चाहिए, पेट के लिए। अल्टीमेट कोई भी होगा, बड़ा छोटा, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होगा और भी कुछ होगा, पर सारा आकर के एक ही उत्तर होता है कि हम जो कर रहे हैं पेट के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर आएंगे ना, तो फिर दूसरी जो बात है कि उन्होंने, ऋषि मुनि तब बनते हैं जब वो भोजन का त्याग करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने भी या हमने भी भोजन का त्याग करना माना जो स्वादिष्टता के पीछे पड़ता है मनुष्य, जो कहा जाता है कि जिह्वा लवल्यात् प्रसक्तानां मीनानां मधो जायते, जो जिह्वा की चंचलता में फंस जाता है उसकी मृत्यु ऐसे ही होती है जैसे मछली की होती है। तो ऐसे ही आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य जिह्वा की चंचलता की ओर इतना हिरा हुआ है, उससे उसको उभारना बहुत मुश्किल है। बाहर की जो चटपटी चीज़ें हैं वो खाने में इतना मशरूफ होए कि उसको त्याग का संकल्प भी नहीं उठता है। आज देखिए भारत की, मैं सवेर कल भी कह रहा था कि आज भारत के राष्ट्रपति हैं, और जब वो राष्ट्रपति भवन से ये सूचना बाहर निकली कि यहाँ के राष्ट्रपति मछली मांस तो छोड़िए, प्याज लहसुन भी नहीं खाती हैं, उनके किचन से निकाल दिया गया है, तो एक बात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बन जाती। ऐसे ही मोदी जी हैं, 9 दिन तक वो भोजन नहीं करते हैं, लेमन जूस पर रहते हैं। तो ये संकेत दे रहे हैं एक तरफ कि ये वेश्यालय से निकल करके शिवालय तक जा सकते हैं, ऐसी आत्माएं आज हमारे बीच में हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दादियां कैसे बनी, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अब हम यहाँ कुछ भाई समर्पित हैं, बहनें समर्पित हैं, उन्होंने भी अपना घर बार छोड़ दिया, परंतु दादियों ने घर बार ही नहीं छोड़ा बल्कि संबंधों का भी त्याग किया। वो संबंधों से इतने निर्मोही हो गए कि हमको ये पता ही नहीं चलता था प्रारंभ में कि ये दादी की बहन है, ये दादी के बहन की बेटी है, ऐसा है। तो ये एक वंडरफुल बात रही कि संबंध जो देह के है, और आप कितना भी मेहनत करेंगे देही अभिमानी बनने की, यदि देह के संबंधों का ध्यान रहेगा तो कदापि हम देही अभिमानी बन नहीं पाते, संभव नहीं है। इसीलिए उतना त्याग हम कर पाए इस जन्म में तो हमारे अहोभाग्य है। तो ये आवास और देह के संबंध से परे जीवन, ये श्रेष्ठ जीवन है। ऐसा जीवन जीने की यदि हम प्रैक्टिस करते हैं। अब रही बात, कोई भाई है वो गृहस्थी है, वो क्या करें, गृहस्थ में ही रहेंगे, परंतु भगवान ने सूचना दी या ज्ञान दिया कि कमल पुष्प के समान रही है। अब ये जो कमल पुष्प है तो कीचड़ में, फिर भी आप देखेंगे उसका सारा परिवार कीचड़ में ही है। कभी आप जहां कमल खिलते हैं देखेंगे तो सारा परिवार उसका नीचे बहुत बड़ा होता है, कमल ककड़ी, कमल बीज आदि आदि अंदर होते, पर वो ऊपर में है। कोई यदि गिरा भी, पानी की बूंद भी गिरी तो फिसल के नीचे चले जाती है, मगर उसको आकर्षित नहीं करती है। तो इस तरह से ये भी जरूरी है कि हम रहें गृहस्थ में, परंतु वहाँ जो अप एंड डाउन्स होते हैं उसके साथ हमारी स्थिति भी न हो, ऐसी एक मेहनत हम करनी चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा, बच्चे मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाबा जरूर मदद करता है, पर मदद उनको मिलती है जो अपनी मदद करते हैं। अपनी मदद करना माना थोड़ा सा पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करना माना परिवर्तन करना। हम कहते हैं हम पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी का तात्पर्य बाबा ने कहा कि हम परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तन इतना होना चाहिए दूसरा बोले, हम नहीं बोले, दूसरा बोले ये क्या से क्या हो गया, कैसा था कैसा हो गया। तो ये एक बात है। दूसरी बात जो उन्होंने त्याग किया वो था भोजन का। तो बाह्य प्रपंच के बाहरी दुनिया में जो भोजन है उसकी ओर आज देखेंगे, एक से एक बड़े आलिशान 5-star, 7-star होटल्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो वहाँ बड़े शौक से मनुष्य जाते हैं। उससे भी ज़्यादा आज जो सामान्य मनुष्य है वो रोड छाप ही है आप देखेंगे, जबकि उसको मालूम है कि स्वास्थ्य कितना आज बिगड़ रहा है मनुष्य का, परंतु वह उस पर ध्यान नहीं देता है और अपने जीवा की चंचलता के पीछे कहाँ कहाँ भटक रहा है। और हम हैं कि बाबा हमको उससे छुड़ा दिया, उससे दूर किया कि आज हमको बर्गर क्या है, पिज्जा क्या है, उसका टेस्ट नहीं पता है। बाहर की दुनिया में तो मनुष्य खाने पीने में मस्त है। तो ये जो इनकी स्थिति बनी तो एकदम बाबा ने उनको ऐसे रखा। आप देखेंगे कई दादियों के उदाहरण हमारे यहाँ मधुबन के तुलसी भाई भेजते हैं, तो कल भी दादी सीतू का मैं पढ़ रहा था, क्या वंडरफुल ट्रीटमेंट बाबा की रही। ऐसे कई ट्रीटमेंट सुनने को मिलते हैं जो बाबा ने दिए। तो यहाँ ये भी देखना है कि कल या परसों की मुरली में वो अहोभाग्य है जिनको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो योग में रह करके भोजन बनाते होंगे, परोसते होंगे, और उनसे भी ज़्यादा याद बाप की याद में रह करके भोजन करते होंगे। तो ऐसा हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती है। हम जब शुरू शुरू में आए तो पांडव भवन के वीआईपी रूम में भोजन मिलता था, जगदीश भाई जी भी वहीं खाते थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये सब हैं तो सीनियर, परंतु वो बैठ करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे करते हैं, तो बाजू वाले कमरे के कॉर्नर में वो बैठे भोजन करते थे, मगर हमसे नहीं। क्योंकि जब बाबा ने कहा है कि बाप की याद में, जब उसकी याद में बैठते हैं तो वो भोजन प्रसाद बनता है, वो भोजन औषध बनता है। ऐसे हम लोगों को कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी, परंतु हम कहाँ तक उस ज्ञान की बात पर खरे उतरते हैं, ये भी देखने की बात है। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम मानेंगे कि हमारी स्थिति उस हायर लेवल तक जा नहीं पाएगी, ये बात आवश्यक है। तो दादियों का, जैसे हम शुरू में ब्रह्मा भोजन हिस्ट्री हॉल में करते थे, तो एक बहन जरूर वहाँ पर योग में बैठी रहती थी और बाकायदे सबको सारा भोजन परोसने तक याद में बैठना पड़ता था, याद में बैठते थे। और जब वहाँ से आज्ञा मिलती थी, अभी ये शिव बाबा के ब्रह्मा भोजन स्वीकार करें प्यार से स्नेह से, तभी जा करके निवाला मुँह में डालते थे, तो वो भी एक दिन थे। तो वो दिन और आज दिन में बहुत फर्क पड़ता है। तो यदि हम थोड़ा सा भी उस ओर ध्यान देंगे तो अच्छा है, हमारी स्थिति और भी अच्छी होगी। और फिर हमारी स्थिति के माध्यम से, जब हम सीनियर बन जाते हैं तो हमारी स्थिति के माध्यम से अन्यों की स्थिति भी श्रेष्ठ हो सकती है, होती है। अब आप देखेंगे, हम जब ट्रेन में आते हैं तो ट्रेन वाले को भी पता है, ये जो बैज पहन के लोग आते हैं ब्रह्म कुमारी वाले, वो कहते हैं ओम शांति वालो, हमको भोजन नहीं पूछते हैं वो लोग, पानी जरूर पूछेंगे क्योंकि हम लेते हैं। तो ऐसा और किसी संस्था का नहीं होगा। हाँ, जैन लोग भले करके बाहर का भोजन नहीं करते, परंतु आज ट्रेन में जैन भोजन भी मिलता है, जिसमें और कुछ नहीं होता है, वेजिटेबल्स एंड राइस मिल करके देते हैं। तो ऐसे हम वो भी नहीं लेते हैं ना। तो ये भी है कि दादियों ने जो त्याग किया, या समझिए जब बेगेरी पार्ट चला तो बाजरे की गंजी और छांच उन सबको मिलती थी, और जिसकी सर्दी वगैरह भी थी तो भी ठीक हो जाती थी, परंतु वो भी एक परीक्षा की घड़ी थी कि उस बेगेरी पार्ट को देख करके कई पत्ते झड़ गए और वो अब पता नहीं कहाँ चले गए। क्योंकि हम 1975 में मद्रास में एक सम्मेलन था, गए थे, तो हम सबका ब्रह्मा भोजन एक गृहस्थी के घर में था, और वो बहुत बड़ा घर, उसके ऊपर शिव बाबा का एम्बलेम लगा हुआ था। और वहाँ से एक जो दादी आई, दादी के गले पड़ करके इतना रोई, क्यों रोई माना, बेगेरी पार्ट में वो बच्चे के बुलावे पर चले गई, और वहाँ गई तो उसकी बहू ने उसको तंग करती रहती है। तो वो उसको बोली, दादी मैं कहाँ से कहाँ आ गई, स्वर्ग छोड़ करके यहाँ स्वर्ग मिलता है ये सोच करके नरक में आ गई। तो ये बातें हम देखते हैं। हाँ, बाबा ये जरूर कहता है कि बच्चे जाएंगे कहाँ जाएंगे, एक ही हट्टी है सुख और शांति मिलने की, परंतु जब हम हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमारे अपने ऊपर। क्योंकि एक बात कही जाती है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय और प्रवचन करने से या ज्ञान का दान करने से कभी भी मनुष्य को थकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी आत्माओं का भोजन है जो हम सूक्ष्म रीति से तैयार करके उन तक परोसते हैं। तो ऐसा ये रहा। तीसरी बात जो कल निर्मला दीदी कह रही थी कि ड्रेस कोड होता है बीकेएस का, तो ये हमने देखा दादियों का, जो दादियाँ पता नहीं, सिंधी लोग ड्रेस के बहुत प्यारे होते हैं, उनकी ड्रेस इतनी महीन होती है, बात मत पूछिए। हाँ, उनको वाइट प्यारा लगता है, ये हमने देखा है, आभूषण नहीं पहनती हैं। परंतु बाबा के घर वाले जो थे, तो वो रानियाँ भी कहती थी कि इतनी अच्छी ज्वेलरी तो हम भी नहीं पहनते थे ऐसी, पर इन्होंने त्याग किया। तो ये था तीसरा त्याग उन लोगों का, कि वस्त्र जो हम लोग आज कलर में घिरे हुए हैं। तो कई पूछते हैं कि आप रंगीन ड्रेस नहीं पहनते हो, तो कहते हैं हाँ हम पहनते हैं ना, सात रंग मिलकर के सफेद होते हैं, आप एक रंग दो रंग पहनते हो और हम सतरंगी के कपड़े पहनते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है कि बाहर की जो दुनिया है उसमें भी जो बहनें माताएं हैं, आप कहीं भी जाएंगे, हम कभी हैदराबाद नुमाइश में जाते हैं तो 60% स्टॉल्स जो होते हैं वो बहनों के ड्रेस के और ड्रेस मटेरियल्स के होते हैं। तो इस प्रकार से हम वहाँ से निकल गए तो हमारा जीवन एक अलग हो गया सांसारिक जीवन से, दैहिक जीवन से, लौकिक परिवार के जीवन से। तो तीसरी चौथी बात ये हुई कि हर मनुष्य को अपना एक ईगो होता है, ईगो अहम, और ये बहुत काम करता है लौकिक में अहम। पर यहाँ बाबा कहता है इस अहम से भी तुम जीतते हो, नम्रता विनयशीलता, ये कहा जाता है ऐसे, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। तो ये विनय किसी की कमजोरी नहीं होती है, लोग समझते हैं शायद ये कमजोर है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा मेरी भावना है कि विद्या विनय को देती है। तो ऐसा हमने दादियों में, उसमें भी बड़ी दादी में विशेष करके हमने देखा कि कैसे विनय का तात्पर्य है बड़ों को गौरव देना, छोटों को प्यार देना, दोनों भी, नहीं तो छोटों का तिरस्कार, जूनियर का तिरस्कार न हो, ये भी ध्यान रखा जाए। और ये जरूरी भी है क्योंकि छोटा ही कल जा करके बड़ा बनता है। जैसे हम कटक में गए हुए थे तो बहन कह रही थी ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये हमारे घर सेंटर के सामने खेलता था, तो ऐसे छोटे से आज वो मिनिस्टर बन गया। तो वो छोटेपन में ही उसी तरह का एक अनुभव वो बहनों में भी करते हैं। तो ऐसी बातें हैं, ईगोइस्टिक लाइफस्टाइल से हम ऊपर उठ जाते हैं बाहर की दुनिया में। उसमें भी हम जब सोशल सर्विसिंग में काम करते हैं तो हमारा फोकस ज़्यादा कर करके लाइन्स एंड रूटीज पर रहता है, जेंट्स एंड जेसीज पर रहता है। तो आप देखेंगे वो टाई सूट बूट से बहुत टाइट रहते हैं, बहुत इगोइस्टिक लाइफ उनका होता है बाहर में। तो वहाँ जब हम यहाँ बाबा के बनते हैं तो हमारे अंदर वो जो विद्या है, विद्या या विद, जो हम खुद को जानते हैं, खुदा को जानते हैं और वर्तमान दुनिया कैसी है, आने वाली दुनिया कैसी है, इसका भी परिज्ञान हम रखते हैं। तो इसीलिए जरूरी होता है कि जब है विद्या हमारे पास, समझ है, तो ऑटोमेटिकली विनय भी आता है। विनय से ही वो कहते हैं पात्रता आती है, योग्यता आती है, क्योंकि योग्यता एक ऐसी चीज़ है सामने वाला व्यक्ति न चाहते हुए भी रिस्पेक्ट रिगार्ड देता है कि भाई ये योग्य व्यक्ति है। तो योग्यता के आधार पर हमें संपत्ति, और संपत्ति के आधार पर हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। आज जब हम हमारी योग्यता सिद्ध करेंगे तो हमारे लिए सेवा कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। परंतु ये भी देखना है कि कैसे हम उस विनय के आधार पर पात्रता को, योग्यता को हासिल करेंगे, और योग्यता के आधार पर संपत्ति ऑटोमेटिक मिलती है। आज हम कहीं जाते हैं छोटे छोटे, हम एक अमरावती में गए थे, वहाँ एक विलेज में जाना हुआ, विलेज में उसके सरपंच ने उनको एक पाव एकड़ जमीन दी हुई थी, और वो जो बाबा का केंद्र बन रहा था, मैं समझता हूँ मुंबई का कोई केंद्र भी उसके सामने कुछ नहीं, वो बहन ने ऐसे ही, क्योंकि उसके पास धन आ गया तो धन से धर्म कार्य उसके लिए सरल हो गया। अब वो करना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने कहा कि हमने घर छोड़ा मगर जो दूसरा घर है उसमें नहीं अटकते, जैसे दादियों का अनुभव रहा। दादियां कहाँ कहाँ गई, कैसी कैसी परिस्थिति में सेवाएं की, परंतु लास्ट लास्ट में हमने देखा कि उनको कोई मोह उन स्थानों पर जहां पर उन्होंने सेवा की नहीं थी। पर हम हमारा अनुभव ये होता है कि हम जहां सेवा करते हैं हम उसको हमारी पकड़ में रखना चाहते हैं, पर करने दीजिए उसको सेवा। तो ऐसा हम समझते हैं, इगोइस्टिक लाइफस्टाइल से बदल करके, अहंकारिक जीवन से बदल करके यदि हमारे जीवन में एक नई विनयशीलता आती है, विनम्रता आती है, तो हमारा जीवन तो श्रेष्ठ बनता ही है, पर सामने वाले को भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये बहुत जरूरी भी है हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए, क्योंकि उसी आधार पर ही भविष्य बनता है। क्योंकि बाबा कहते हैं आज तुम झुको कल सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, ये नियम है। जो झुकता है वो झुका भी सकता है, और ये अनुभव हो सक ऐसा अनुभव हमको करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जीवन उन्हीं ऋषि मुनियों के समान होना जरूरी है। मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे जो चित्र हैं कल्पवृक्ष या सीढ़ी, उसमें कहीं भी ऋषि मुनि के चित्र सतयुग त्रेता में नहीं है। अब जो हमें सिनेमा दिखाए जाते हैं, साहित्य मिलता है, टीवी शोज मिलते हैं, आप देखेंगे वहाँ पहले सतयुग में, क्योंकि त्रेता तो राम जी थे ऐसा दिखाते हैं, और सतयुग में तो चार अवतार मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह, चार अवतार हुए एक ही युग में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कलयुग से दुगुना द्वापर से तिगुना, तीन गुना त्रेता से चार गुना वो उसकी आयु थी सतयुग की। तो इतने लंबे अरसे का वो सतयुग था, तो जरूर वहाँ चार अवतार होने चाहिए ऐसा। तो वो चार अवतार दिखाते हैं। अब वो अवतार उस तरह से वहाँ भी राक्षस है, कोई शांति सुख का नाम दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। त्रेता में 12 वर्ष की उम्र में विश्वामित्र के साथ राम को जाना हुआ राक्षसों का संहार करने के लिए, तो वहाँ भी वही हाल है। द्वापर में देखते हैं अभी पैदा ही हुआ है श्री कृष्ण, तो वो पूतना आती है और भी कई राक्षस आते हैं, मारे जाते हैं, तो उसका जीवन भी उनके पीछे ही पड़ा रहता है। तो उन जीवन से ऐसा है ना, दिखाते हैं ऐसा। तो अब कौन सा युग बचा? कलयुग, जिसमें हम रह रहे हैं। यहाँ तो कई रावण हैं, कई कंस हैं, तो उनके बीच में फिर हम उभर के आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जो अच्छाई होती है ना वो धीरे धीरे पनपती है धीरे धीरे, और जो बुराई है वेरी फास्ट उसका प्रचार प्रसार होता है। लोग उसको अपनाते भी हैं क्योंकि वो लगता है कि सरल है, क्योंकि हम वहाँ सतयुग से नीचे धीरे 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 उतरते आए तो जितना शरीर छोड़ा, जितनी बार लिया, तो कहा जाता है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये काम है, ये क्रोध है, ये सारा का सारा ये शरीर से संलग्न है, मिला हुआ है। तो हम एक शरीर छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरा, ऐसे इतने जन्म लिए, तो हम वो आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई जन्म मरण के अंदर में। तो आत्मा की जो ओरिजिनल शक्ति है, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, सत्यता आदि, तो ये शक्तियाँ क्षीण होती गई और हम आज निशक्त बन गए। और कोई हमें ऐसी बात बताता है तो कहते हैं नहीं, ये हमारे साथ हमारी बात हमसे नहीं होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। परंतु हम समझते हैं अब हमसे हो रहा है, और वो वापस जो मर्ज्ड है आत्मा के अंदर शक्ति, उस शक्ति को हम सर्वशक्तिवान की शक्ति ले करके इमर्ज कर रहे हैं, उसको प्रस्फुरित कर रहे हैं, उसमें पुनश्चेतनता दे रहे हैं। ये कार्य हमारा है। अब इस कार्य को जितना हम तीव्र गति से लाएंगे, तो हम जिस टारगेट को लेकर के ठहरे बैठे हुए हैं, ये युग बदलना चाहिए, वो बदलेगा। अब ये बात तो सब बार बार कहेंगे कि भाई हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, तो फिर प्रश्न उठता है आप कब बदलोगे, ये भी डेट बता दो कि आप कब बदलोगे। तो यहाँ वो एक प्रक्रिया हम इस ज्ञान सरोवर में लेकर के बैठे हैं कि थोड़ी तो थोड़ी हमारे अंदर हम बदलेंगे और ये बदलाव बाहर जाकर के दिखाई दे, तब वो होगा विजय का नगाड़ा। ऐसे भी और कई बार ये भी होता है, विजय की जब मैं बात करता हूँ तो लोग कई बार ये पूछते हैं, भाई साहब ये जब बोलते हैं आप विनाश के बाद नया योग आएगा तो विनाश कब होगा? और कई भाई बहन मैं देखता हूँ वो बराबर डेट बोल देते हैं, ब्रह्मा का युग 100 वर्ष का है, तो 1936 में बाबा आया तो 2036 में विनाश होगा। अब आप सोचिए किसी को ये बोल दिया जाए, क्योंकि हम जब ज्ञान में आए 1969 में, तब बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा होर्डिंग था, बहुत बड़ा, उसमें लिखा हुआ था श्री कृष्ण होने वाले महाविनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहे हैं। और फिर बाद में रोड पर ऐसा एक ट्रायंगल वो एडवर्टाइजमेंट का होता है, तो उस पर भी लिखा था उठो उठो जागो, आने वाले 7 वर्षों में यहाँ महाविनाश होगा। तो हम तो उस पर ध्यान नहीं गया, मेरा व्यक्तिगत ध्यान नहीं गया, और मैंने देखा बाबा भी अव्यक्त मुरलियों में ये बोलता था, बच्चे अभी 6 साल बाकी हैं, 5 साल बाकी हैं, 4 साल बाकी हैं, ऐसे कर करके 1 साल तक आ गए। 1976 विनाश हुआ नहीं, तो 1977 जनवरी 18 को बाबा ने बहुत लंबी मुरली चलाई और उसमें साफ कहा कि विनाश तो हुआ। क्योंकि विनाश नहीं हुआ ये देख करके कई भाई बहने पत्ते झड़ गए जबरदस्त, जो कुछ झड़ गए और कुछ जिन्होंने रोक रखा था शादी को कि भाई 76 में विनाश होता है तो क्यों शादी करना, जब नहीं विनाश हुआ तो फिर उन्होंने शादी कर ली, जो घर बनाने को रोका हुआ था विनाश होता है तो क्यों घर बनाना, वो घर बनाना शुरू किया, जो गृहस्थी रुके हुए थे पवित्रता पर वो फिर वापस बैक टू पैवेलियन चले गए। तो बाबा ने कहा ये विनाश होना था, देखना था बाबा को कि कितने कच्चे पत्ते इसमें हैं जो झड़ जाएंगे, तो ऐसा हुआ। अब हम 36 के पीछे न पड़े और न बोले, मेरा ऐसा व्यक्तिगत अभिप्राय है, क्योंकि 36 तो कल आया कि आया, और इतने में कौन सा ऐसा जादू होने वाला है छम छम वो बोल करके कि भाई ये युग बदल जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे बदलने में इतना फर्क, इतना टाइम लग रहा है, तो अब खींचातान कर करके हम कहते 10 लाख। मैं कई वर्षों से देखता हूँ यही कहा जाता है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों की संख्या 10 लाख है, ये 10 लाख बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी पता नहीं 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की और 800 करोड़ जनसंख्या विश्व की है, तो इतनी जनसंख्या तो अभी बदलनी चाहिए ना, क्योंकि सर्व का पिता परमात्मा है। कुछ लोग सतयुग में जाएंगे और कुछ लोग शांति धाम में बैठे रहेंगे, तो दोनों जाएंगे तो एक ही साथ आगे पीछे, तो फिर ये कैसे संभव होगा? ऐसे कोई जादू की छड़ी तो नहीं है अलाउद्दीन की जो बदल जाए ये दुनिया इतने कम, तो हम 2022 में बैठे हैं तो 14 साल में क्या हो सकता है सोचिए। इसीलिए होगा जरूर, और ये भी है कि बाबा ये कहता है कि कृष्ण की उम्र 24 साल की होगी और जब वो पद ग्रहण करेंगे श्री नारायण श्री लक्ष्मी तो वो और 24 साल आगे चले जाएगा और तब तक नई दुनिया बनेगी तब होगा, ये सारी बातें हैं। इसीलिए विनाश के चक्कर में न जा करके हमारे अंदर जो विकारों का मलबा जमा हुआ है उसका विनाश कैसे हो, वो कैसे हम कर सकते हैं, उसके पीछे हमारा बुद्धियोग चलना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऐसा मैं समझता, मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है, क्योंकि आप सब सुविघ्न हैं, पढ़े लिखे हैं, यज्ञ के कर्ता धरता हैं, जीवन को बना करके बनाने दूसरों के जीवन को बनाने वाले हैं, तो फिर आप सब की अभिप्राय मेरी नहीं हो सकती, तो इस रीति से हम देखते हैं। तो इसीलिए होना क्या चाहिए कि जो ज्ञान का मूल है आत्म परिचय, यह जो आत्म परिचय है अभी भी कभी कभी मैं सोचता कि मेरे को ही शायद आत्मा का पूरा परिचय नहीं है, क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म आत्मा बिंदु में, बिंदु आत्मा में बाबा कहे ये मन और बुद्धि उसमें समाहित है। अच्छा, ये जो मन है, ये जो मन है, आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से भी पूछिए ये मन कहाँ है। हम बोल तो देते हैं मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन अशांत है, मेरे मन में भवंडर है, वो है, ये है। वो है कहाँ मन? तो यहाँ मन यहाँ बताते हैं, बुद्धि यहाँ कहते हैं, ये बोलने की बातें हैं। न यहाँ मन है, न यहाँ बुद्धि है, और मन और बुद्धि का केंद्र तो आत्मा है। तब ये मन क्या है? हमारे विचार हैं। अब विचार गंदे हैं, विचार विकारी हैं, विचार देह से संलग्न मिले हुए हैं। तो अब इन विचारों को शुद्ध करने का एकमात्र मार्ग यह है कि जितना जितना हम ये अध्ययन करेंगे, अध्ययन पढ़ेंगे, क्योंकि आज देखिए इन दिनों में विशेष करके कोई ठेले चाय का, दिल्ली में एक चाय का ठेला रखा हुआ था, उसका लड़का आईएएस बना, एक ऑटो रिक्शा वाले की बेटी सारे भारत के चार्टेड अकाउंटेंट्स में टॉप ग्रेड में पास हुई, और भी कहाँ कहाँ आप देखते हैं। एक माता थी जो म्यूनिसिपैलिटी की झाड़ू लगाती थी म्यूनिसिपैलिटी में, उसके तीन लड़के थे, एक तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बना, एक आईएएस ऑफिसर बना, एक एडवोकेट। तो ऐसे आज दिखाई दे रहा है कहाँ झोपड़पट्टी में रहे हुए लोग जाकर के आईएएस बन रहे हैं। ये एक नया दौर चल रहा है भारत विशेष में, कि ऐसा भी हो सकता है। सुपर लोग बनते हैं नहीं, बल्कि डाउनट्रोडन ग्रास रूट में रहे हुए लोग भी बड़े ओहदे पर जा सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को भी, जो सोच भी नहीं सकते कि ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। जब शुरू में हम लोग एग्जीबिशन में पहला चित्र होता था, उन दिनों में एग्जीबिशन बहुत होते थे, तो छोटे छोटे वो पहला चित्र होता था लक्ष्मी नारायण। जब ये हम कहते थे हमारा एम है ऐसे लक्ष्मी नारायण बनना, और ऑब्जेक्ट है ये ईश्वरीय ज्ञान, तो एम लक्ष्मी नारायण, हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो वो बेचारा कभी उस चित्र को देखता था, कभी हमारे को देखता था कि भाई ये वो कैसे हो सकता है ऐसा। परंतु ये हुआ ना, भाई जो नहीं हो सकते हैं उनको बाबा बैठ करके खुद ढाल रहा है, चीजलिंग कर रहा है। जैसे आप अक्षरधाम में जाएंगे तो पहला जो सामने की मूर्ति दिखाई देती है वो सेल्फ चीजलिंग है, खुद अपने आप को वो बना रहा है। ऐसे ही बाबा हमको ज्ञान तो दिया, पर वो ज्ञान हम लेकर के, जिसको कहते विद्या, वो है विद्या। ऐसे माना जाता है विद्या अविद्या दो हैं, एक विद्या जो बाबा हमको दे रहा है, अविद्या जो बाहरी दुनिया में, चाहे वो वकीली की होगी, डॉक्टरी की होगी, इंजीनियर की होगी, और भी कोई होगी, वो उसको अविद्या माना जाता है शास्त्र के अनुसार। तो हम विद्यावान हैं, हमारे अंदर विद्या, अब हम बैठ करके कूट करके उसको भर रहे हैं। तो जितना हम भरेंगे, माना मैं देखता कि अभी हमारी मुरली है, ये सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत है, इसके सिवाय और कोई ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान इन मुरलियों से निकला हुआ है। तो हमारा जो ध्यान है वो कितना इन मुरलियों के ऊपर रहता है, और उसमें भी इन दिनों जो रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरलियां हैं, यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी तो ये आंखें खोलने वाली मुरलियां हैं। और फिर ये भी लगेगा कि इस अवस्था को प्राप्त करने तक हम कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हमको। एक ही अव्यक्त मुरली आप सामने रखेंगे तो आपको लगेगा कि इस अवस्था जो बाबा मुरली में कह रहा है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए कितनी न मेहनत करनी होगी, कितनी नींद को त्याग करना होगा, कितना अन्य बातों से हम अपने आप को समेट लेते हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है कि हम मुरली को कहाँ तक अपने में समा लेते हैं। अब वो जो बाबा आते थे वो एक मैग्नेटिक पावर थी, जो हमको दो ढाई घंटे इन दिनों में और पूर्व काल में कभी कभी 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा तक भी बैठे रहते थे। वो मैग्नेट था। अब वो मैग्नेट हमारे सामने नहीं है, हम ही मैग्नेट हैं। तो हमारा हम चाहते हैं कि वो मुरली में जो सत्व है, उस सत्व को, जिष्ट को, सार को हम कैसे अपने अंदर समा सकते हैं, ताकि ये जो कहा जाता है कि सोसाइटी इज ए वेब ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, ये मनुष्य के संबंधों का एक ताना बाना है। अब आप बाहर की दुनिया में देखेंगे कि संबंध बिगड़े हुए हैं, चाहे वो माँ बाप बच्चों के बाप के हैं, पेरेंट्स के और बच्चों के हैं, या पति पत्नी के हैं, या अन्य किसी भी जॉब के हैं, संबंध बिगड़े हुए हैं। और यहाँ बाबा कह रहा है कि बच्चे तुमको खीरखंड होकर के रहना है। तो ये खीरखंड होकर के रहने के लिए कितनी हमको ईगो माना अहम को त्यागना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये खीरखंड बन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक संस्कार भरा हुआ है कि हम हु इज हु, एक बुक होती है हु इज हु, कौन क्या है। तो हम भी यही कहते हैं कि तेरे को नहीं मालूम वो क्या है, मेरे से पूछ, मैं बताती हूँ, बताता, ऐसा हम बोलते हैं। माना क्या जानते हो, उसकी कई वीकनेसेस का सारा चिट्ठा मेरे पास है, ऐसा हमारे पास ज्ञान है कईयों का। तो इसीलिए उन बातों से कौन कैसा है उससे हमारा कोई क्या लेना देना है, ये भी ध्यान पे इन दिनों में रहे खास, क्योंकि हर एक अपना, जब बाबा कह रहा है कि हर एक अपना पार्ट बजा रहा है, आप लाख सुधारो पर वो अपना पार्ट जरूर बजाएगा जरूर, क्योंकि उसको मिला हुआ है ना पार्ट। जैसे हम देखते हैं उस समय ये विलन देखते, फिल्म देखते थे, तो विलन बेचारा कितना सताता है हीरो को, और लास्ट के 5-7 मिनट समझिए 3-2 घंटे का पिक्चर होता है, तो करीब करीब पौने दो घंटे से ज़्यादा उसको सताता है, और लास्ट के 5-7 मिनट में उसकी इतनी पिटाई होती है पूछिए मत। तो ऐसा वो उसको बोला, अभी तक तो वो पीट रहा था, अब ये क्यों पिटवा रहा है, क्योंकि डायरेक्टर ने बोला है तो कुछ मत कर, हीरो को पीटने दे, तो उसका पार्ट चल रहा है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी होता है। आजकल हम ये समझेंगे कि मैंने अनुभव किया कि हम ये समझेंगे कि हम सीनियर है, नहीं, आज वो नहीं है। मेरा अनुभव ऐसा हुआ है कि हम जो छोटे थे तब हमारे सामने जो बुजुर्ग स्टूडेंट ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, वो कितना रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से ठहरते थे, बात करते थे। आज हमारी उम्र 70 से ऊपर हो गई तो 17 साल का लड़का भी आग दिखाता है। ये रिवर्स गाड़ी चल रही है, क्योंकि युग युग का इफेक्ट होता है और समय का प्रभाव होता है। तो समय ऐसा है, इसीलिए नम्रता, इसीलिए जितनी भी पॉसिबल है सहज शक्ति, जिसको सहज सहन शक्ति कहते हैं, वो हमारे अंदर कितने आई है वो आवश्यक है, उसको चेक करना, उसको बढ़ाना। क्योंकि जब समाज की सेवा करने निकलते हैं ना, तो ये भी जरूरी है कि सहन भी कर सकते हैं क्या, शीतोष्ण सुख दुख सम, जैसे वो कहते हैं समत्वम योग उच्यते, हार जीत सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में कहाँ तक हम समत्व का पालन करते हैं या अनुभव करते हैं कि हम सम हैं। तो वो आना भी मेरा जहाँ तक अनुभव है जरूरी है कि हम समभाव कैसे रखें, क्योंकि वो रखता है। जैसे बाबा को देखते थे तो अव्यक्त में या साकार में हर एक की कमी पेशी को बाबा हंस करके उसको पॉजिटिवली सुधारने की कोशिश करता था, पर हमारे अंदर इगोइस्टिक अहम होने के कारण से हम बहुत जल्दी ही बिगड़ जाते हैं। आप कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हाँ हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा ही अनुभव हम सुना रहे हैं कि हम जरूर बिगड़ते हैं। तो इसीलिए वो सारी बातें समा करके यदि हम सेवा माना सेवक माना नम्रचित विनयशील, तो वो एक भाव हमारे अंदर समाहित होना चाहिए और जितना जितना वो होगा उतना हमारी अवस्था अच्छी होगी। तो मैं एक बात कहा कि ये मन क्या है, विचार शक्ति है। हमारे विचार पुरातन है, पहले से पिछले जन्म के आए और इस जन्म में हमारे मातृगर्भ से मिले, माता से मिले, पिता से मिले, काका भाई चाचा मामा से मिले, ये सारे हैं। उसके बाद हम ज्ञान में आए तो ये वो सारे विचार हमारे ऊपर हावी होते हैं, क्योंकि कहा वो विचार सारे हमारे रग रग में भरे हुए हैं। और कहा जाता है कि इंद्रियाणि प्रमाथिनि, ये इंद्रिय प्रबल हैं और ये मन को हर लेती हैं अपने ओर। आप देखेंगे कि हम नहीं देखना चाहते हैं उस ओर, परंतु दृष्टि चली जाती है। हम नहीं सोचना चाहते हैं किसी पर हम सोचने लग पड़ते हैं, ऐसा है। इसीलिए जो इतनी इंद्रिय ये इन शक्ति कहाँ से आई, ये हमारे पुराने संस्कार से, पुराने विचारों से। इसीलिए जितना हम ईश्वरीय विचारों में रहेंगे, ये जो संग है, जैसे हम सत्संग बोलते हैं, बाबा कहते हैं सत्संग तारे कुसंग बोरे, ये सत्संग क्या है? एक है आत्मा का संग, मेरा अपना संग, मैं जो ओरिजिनल हूं, जैसे अभी कह रहे थे मैं कौन, तो ये जो मैं कौन है ये सत्संग है, पहला सत्संग है। सत आत्मा है, अविनाशी है, अजर अमर है, अक्लेद्य अशोष्य अमारो तो अदय है, बोला जाता है, कटती नहीं, भीगती नहीं, जलती नहीं, ऐसी मैं हूं आत्मा। तो ये जो है, और फिर बाबा ने एक उसमें और भी कि बच्चे ओरिजिनली तुम आत्मा शांत और शुद्ध हो, तो ये ओरिजिनल ध्यान पे रहे, तो ये सत्संग। दूसरा सत्संग है शिव बाबा का सत्संग, कि हम शिव बाबा की याद करें। बाबा कहते हैं शिव मेरी याद करो तो मैं तुम्हारे पाप भस्म कर दूंगा। वहां मन मना भव, तो वो कहते हैं मन मना भव, तो वहां मन को लगाओ। अभी मन को लगाओ माना क्या? हमारे विचार जो लौकिक दैहिक भौतिक हैं, उनको आध्यात्म की ओर परिवर्तन करो। जितना करेंगे, करने में सक्षम होंगे, उतना प्रारब्ध हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये मन दो बातें, तीसरा सत्संग है ये, इसमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जहां भी हमको ऐसी क्लास मिलती है, वो सुने उनके अनुभव को, जितना आत्मसात कर पाते हैं करें, क्योंकि हम बैठे ही हैं। जैसे कहा गया कि आनो भद्राणि शृणवंतु, हम अच्छी अच्छी बातें सुने, क्योंकि ये भी एक जबरदस्त भोजन है जो हम लेते हैं कान के माध्यम से। या ये कहा गया कि भाई लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी तरफ से अच्छे अच्छे विचार मुझे मिले। एक ऐसे माहौल में हम रहे, या ऐसा माहौल या वायुमंडल हम हमारे इर्द गिर्द क्रिएट करें, हमको ही क्रिएट करना पड़ेगा हमारे कल्याण के लिए। तो ऐसी बातें हैं, तो वो होने से क्या होगा, ये जो विचार हैं इनमें बल आएगा। और अच्छे विचार जब बलिष्ठ हो जाते हैं अंदर, तो वो विचार बुद्धि को प्रेरित करेंगे, जो राइट डिसीजन देगी, हाँ ना लेना है, नहीं लेना है, अच्छा है बुरा है, ये राइट डिसीजन मिलेंगे। फिर जितना राइट डिसीजन मिलेंगे, वो सारे विचार राइट होने के कारण से जा करके संस्कारित होंगे, संस्कार बनेंगे। तो जब संस्कार बनते जाएंगे ना, तब फिर ये दैवत्व का प्रादुर्भाव होगा। मेरी बातें आप समझते होंगे, दैवत्व का, तभी जा करके धीरे 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 हमारे अंदर वो जो लक्ष्मी नारायण की आप मूर्ति को देखेंगे, अज्ञानी ने बनाया, चित्र तो ज्ञानी नहीं बनाते हैं ना, अज्ञानी बनाया। चाहे लौकिक में भी मूर्तियां आप देखेंगे, काश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो भी मूर्ति आप देखिए, उस सब के अंदर स्माइल है, मंदहास है। उसको नहीं पता है मूर्तिकार को या चित्रकार को कि देवताएं मुस्कुराते रहते हैं, नहीं, उसने संगम पर देखा था। एक बार सोशल कॉन्फ्रेंस यहां हो रही थी, तो एक भाई साहब आए, वो बोले यहाँ जब मैं देखता हूँ कोई गाड़ी का ड्राइवर है या कार्य करने वाला है या किचन में है या भोजन पर, मेरे को शक आया कि इनका ये ओरिजिनल चेहरा है या इन्होंने मुखौटा पहन रखा है। उसकी भावना देखिए कितनी हमारे प्रति निकली। तो यहाँ देखिए हम सब जो कुछ करते हैं खुशी से करते हैं, किसी के दबाव में नहीं करते हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम हमारी खुशी को और बढ़ाने के लिए करते हैं। हमारी खुशी से कोई खुश होता है तो बहुत अच्छा है। एक आया वो बोला कि ये ब्रह्मा कुमारियों के अंदर इतनी ज्ञान की गहराई है। बोला क्या गहराई है? देखो जी, मैं दिल्ली का सबसे बड़ा होटेलर हूँ, होटल है मेरी, परंतु मेरी बुद्धि अकल में कभी ये बात नहीं आई कि जहां जहां ये लेबोरेटरीज होते हैं, संडास होते हैं, वहां इन्होंने रात की रानी रखी है तो सुगंध आती है। तो ये बातें बाहर वाले बहुत कीन ऑब्जर्व, बहुत ध्यान से देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और उनको ये व्यवस्थाएं प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, क्योंकि इससे भी अच्छे बाहर व्यवस्था होती है, परंतु यहाँ की व्यवस्था में एक और विशेषता है, वो है दिव्यता, वो है परमार्थ की पराकाष्ठा। ऊपरी बहुत परमार्थी हैं, हालांकि हम स्वार्थी हैं, स्वार्थ ही सारा कुछ करते हैं, परंतु इस स्वार्थ में भी परमार्थ भरा हुआ है। तो ये जो सोच हमारी है ऐसी बदलते जाएंगे, क्योंकि ऐसे कहा जाता है थॉट रूल द वर्ल्ड, विश्व को ये जो विचार होते हैं ना, विचार विश्व को चलाते हैं, रूल करते हैं। तो आज आप देखते हैं कि भाई एक व्यक्ति उन्नत पदवी पर है, उसके विचार के अनुसार क्या कुछ नहीं होता है। रात के 8 बजे नोट बंद हो जाते सिर्फ एक विचार के आधार पर। तो ये विचार है ना स्ट्रांग, तो ऐसे विचार यदि और भी होंगे अधिक बलशाली, तो वो माहौल को बनाएंगे, वायुमंडल को परिवर्तन करेंगे, क्योंकि विचार से ही सब कुछ होता है। इसीलिए वहां गायन हुआ, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, यह मेरा मन, यह मेरे विचार। वो ऐसे विचार हो जो परमात्मा के विचार हैं, उनसे मेल खाते हो। यदि दोनों एक साथ चलेंगे, परमात्मा विचार और आत्म विचार, क्योंकि वो निर्विकारी कंप्लीट शिव बाबा के विचार विकार से बिल्कुल से परे हैं, और ऐसे ही विचार यदि हमारे होंगे तब वो मन मना भाव होगा। तब वो मन जिसको हम चंचल है, बेलगाम घोड़ा है, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो और कुछ नहीं है, वो मेरी, मैं चंचल हूँ, मैं बेलगाम घोड़ा हूँ, ये समझ में आना चाहिए, तब जा करके लगाम लग सकता है। नहीं तो दूसरे के ऊपर हमेशा हम ये उंगली ऐसा करेंगे तो नहीं काम चलेगा ना, उन्नति नहीं होगी। इस प्रकार से यह ज्ञान है, और ज्ञान एक सरिता है जो बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहनी चाहिए, क्योंकि जितना हम देंगे, अपूर्व कोशोयम, ये ज्ञान का कोश इतना वंडरफुल है, वे तो जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। अब हमको नहीं पता, वो भाई ने पूछा आप क्या क्लास कराएंगे, हम बैठते हैं ना तो बोलने के समय पर कई ऐसे विचार आ जाते हैं, और वो कई विचार इतने वंडरफुल होते हैं, हम भी नहीं समझ पाते हो कहाँ से, अंदर स्टोर तो है, मालूम नहीं हमको स्टोर में क्या क्या है, क्योंकि बहुत कुछ भरा हुआ है और हमने ही भरा है, हमारे आज्ञा के बिना कुछ अंदर भर नहीं सकता है, हम मालिक है। तो इसीलिए उस प्रकार के विचारों का भरना यदि हम करते रहेंगे, ये मैं फिर वापस आता हूँ वाणी मुरली के ऊपर, ये मुरली जितनी हम पढ़ेंगे, जितना उस पर अंडरलाइन करेंगे अच्छे अच्छे वाक्यों को, फिर उनको शेखर करेंगे, जमा करेंगे या नोट करेंगे एक तरफ, उनको बार बार देखेंगे तो और हमारे विचार प्रबुद्ध होंगे, और प्रबुद्ध व्यक्ति ही संसार को बदल सकता है। कब बदलेगा संसार, कब आएगा स्वर्ग? नहीं, हम लाएंगे स्वर्ग, हम जाएंगे स्वर्ग में, हमारा वहां राज्य होगा। तो वो राज्य पहले स्वराज्य होगा, बाद में सुराज्य होगा। जब तक स्वराज्य नहीं होगा तब तक सुराज्य की कल्पना करना व्यर्थ होगा। इसीलिए ये जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कुछ सोशल विंग के हैं, कुछ कल जो बहुत थे आज थोड़े कम हो गए भाई बहने इस हाल में। तो जितना भी समय मिलता है उसका लाभ लेंगे, क्योंकि हम आए इसलिए हैं कि हम कुछ यहाँ सुने और सुनने के साथ बनने की प्रेरणा लें। सुनना नहीं, सुना तो द्वापर से बहुत कुछ है, बहुत सारे शास्त्र पुराण वेद उपनिषद सुने हैं, प्रवचन सुने हैं, पर यहाँ कोई प्रवचन नहीं करते हैं। हम तो क्लास कहते हैं, क्लास करते हैं, ये स्कूल है। कल कोई कह रहा था ये यूनिवर्सिटी है, सच में भी है यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो पाठशाला होती है वहाँ अ आ सिखाया जाता है, जो कॉलेज होता है वहाँ थोड़ा गहराई होती है, जहाँ यूनिवर्सिटी होती है वहाँ और ज्ञान की डेप्थ में गहराई में हम जाते हैं, एक एक परत निकालने की कोशिश करते हैं, लेयर्स निकालते हैं कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। ये कोशिश जो बोलने वाला है वो करेगा नहीं, बल्कि सुन करके उसको कहते हैं ना, हमारे आदरणीय रमेश भाई जी बार बार कहते थे, बाबा आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये दो कान दिए हैं, जो एक कान से सुनते हैं हम दूसरे से छोड़ देते हैं। तो नहीं, ऐसा कर करके इसको बीच में आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। और इस जो भी कार्यकर्ताओं ने हिम्मत करके ये कार्य यहाँ रखा वो सफल करेंगे, इस आशा के साथ आप सबको अभिनंदन है।